भारतीय दर्शन का सातवां चैप्टर है सांख्य दर्शन। पहला टॉपिक है विषय प्रवेश। सांख्य दर्शन के रचयिता हैं महर्षि कपिल। सांख्य अत्यंत प्राचीन मत है। उसकी प्राचीनता इसी बात से सिद्ध होती है कि श्रुति, स्मृति, पुराण आदि समस्त पुरातन कृतियों में इस विचारधारा की झलक दिखाई पड़ती है। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ है कपिल का तत्व समाज। यह अत्यंत ही संक्षिप्त और सारगर्भित है, अतः सांख्य शास्त्र का मर्म विस्तार पूर्वक समझाने के लिए उन्होंने सांख्य सूत्र नामक विशद ग्रंथ की रचना की। इसीलिए सांख्य दर्शन सांख्य प्रवचन नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि कपिल ने ईश्वरवाद की स्थापना नहीं की। प्रायः उनका विचार था कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। योग दर्शन में ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है, अतः उसे शेषवर सांख्य कहते हैं। महर्षि कपिल की शिष्य परंपरा में आसुरी और पंच शिखाचार्य के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन पर सरल ग्रंथ लिखे थे, परंतु वे काल के गर्भ में विलीन हो गए और अब उनका कुछ पता नहीं चलता। उनके बाद सांख्य दर्शन पर जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ मिलता है वह ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। इसके अतिरिक्त गौड़पाद का सांख्य कारिका भाष्य, वाचस्पति की तर्क कौमुदी, विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य और सांख्य सार भी सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सांख्य नाम की उत्पत्ति कैसे हुई यह अज्ञात है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका संबंध संख्या से है और इस दर्शन का यह नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या निर्धारित की गई है। पहला भागवत में इसको तत्व संख्यान या तत्व गणन कहा गया है। श्रीधर स्वामी इसकी टीका में सांख्य को तत्व गणक कहते हैं। दूसरा मत यह है कि संख्या का अर्थ है सम्यक ज्ञान और इसी अर्थ में यह दर्शन सांख्य कहलाता है। दूसरा, गीता में इसी अर्थ में सांख्य शब्द का बहुत प्रयोग है। न्याय वैशेषिक की तरह सांख्य दर्शन का भी उद्देश्य है सभी दुखों से मुक्ति पाने के निमित्त तत्व ज्ञान की प्राप्ति। इसमें आत्मा के विषय में जितने उच्च कोटि का विचार किया गया है उतना प्रायः वेदांत को छोड़कर और किसी दर्शन में नहीं है। इसीलिए आत्मविषयक सम्यक ज्ञान के अर्थ में भी सांख्य नामक समीचीन जान पड़ता है। सांख्य दर्शन द्वि तत्व का प्रतिपादन करता है, जहां न्याय और वैशेषिक अनेक पदार्थों, परमाणुओं, मनों और आत्माओं की सत्ता स्वीकार करता है, वहां सांख्य केवल दो मूल तत्व मानता है, प्रकृति और पुरुष। इनका क्या स्वरूप है और इनसे सृष्टि का कैसे विकास होता है, इसकी विवेचना आगे की जाएगी। सांख्य दर्शन का दूसरा टॉपिक है सांख्य दर्शन के सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है सत्कार्यवाद। प्रश्न यह है कि कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहती है या नहीं। न्याय वैशेषिक और बौद्ध दर्शन उत्तर देते हैं नहीं। यदि उत्पत्ति के पूर्व ही कार्य की सत्ता विद्यमान थी तब फिर उत्पन्न होने का अर्थ ही क्या रह जाता है और निमित्त कारण का प्रयोजन ही क्या रह जाता है। यदि मिट्टी में घड़ा पहले से ही मौजूद था तो फिर कुम्हार को मेहनत करने और चाक घुमाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा यदि कार्य पहले ही उपादान कारण में मौजूद था तो फिर हम कारण और कार्य का भेद किस आधार पर करते हैं। मिट्टी और घड़ा दोनों के लिए एक ही नाम का प्रयोग क्यों नहीं करते। मिट्टी का लूंदा ही घड़े का काम क्यों नहीं देता। यदि यह कहा जाए कि दोनों में अर्थात मिट्टी और घड़े में आकार को लेकर भेद है, तब तो यह स्वीकार करना होगा कि कार्य में कोई वस्तु विशेष आकृति ऐसी है जो कारण में नहीं थी, अर्थात कार्य वास्तविक रूप से कारण में विद्यमान नहीं था। यह सिद्धांत अर्थात कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है, असत कार्यवाद कहलाता है। सांख्य असत कार्यवाद का खंडन करते हुए सत कार्यवाद का प्रतिपादन करता है। इसके लिए ये युक्तियां दी जाती हैं, यदि कार्य वस्तुतः कारण में अविद्यमान रहता तो किसी भी प्रयत्न से उसका आविर्भाव नहीं होता। क्या बालू से तेल निकाला जा सकता है या आकाश को मथ कर मक्खन तैयार किया जा सकता है? तिल को पेरने से तेल निकलता है क्योंकि तिल में पहले से ही तेल मौजूद है, वह विशेष अवस्था में जैसे कोल्हू में पेरने पर प्रकट होता है। इसीलिए निमित्त कारण का काम इतना ही नहीं कि वह उपादान कारण में अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान कार्य को प्रत्यक्ष कर दे। दूसरे शब्दों में कर्ता के व्यापार से जिस कार्य की उत्पत्ति होती है वह वस्तुतः अभिव्यक्ति मात्र है। दूसरा, देखने में आता है कि किसी खास कार्य का प्रादुर्भाव खास कारण से ही होता है, जैसे दही जब बनेगी तब दूध से ही, और तेल जब निकलेगा तब बीज से ही। मिट्टी से दही नहीं बन सकती और न बालू से तेल निकल सकता है। इससे सूचित होता है कि विशेष कार्य विशेष कारण में मौजूद रहता है, नहीं तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं होती। वैसी हालत में तेली को तेल तैयार करने के लिए तिल या सरसों की जरूरत नहीं पड़ती। वह चाहे जिस चीज से मिट्टी या कंकर से तेल निकाल लेता। तीसरा, केवल समर्थ कारण से ही अभिष्ट कार्य की प्राप्ति हो सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य सूक्ष्म रूप से अपने कारण में विद्यमान था, अर्थात कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अव्यक्त अवस्था में रहता है। यदि कार्य सचमुच कारण में अविद्यमान रहता तो इसका अर्थ यह होता है कि असत से सत की उत्पत्ति होती है, अर्थात शून्य से किसी वस्तु का प्रादुर्भाव हो जाता है जो सर्वथा असंभव है। पांचवा, वस्तुतः कार्य कारण से भिन्न नहीं किंतु अभिन्न है। एक ही वस्तु की अव्यक्त और व्यक्त अवस्थाओं को हम क्रमशः कारण कार्य के नाम से पुकारते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कपड़ा अपने धागों से पृथक वस्तु नहीं है और न टेबल अपनी लकड़ी से भिन्न है। मिट्टी का घड़ा वस्तुतः मिट्टी ही है और पत्थर की मूर्ति वस्तुतः पत्थर ही है। इन सब बातों से सांख्य इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व भी कारण में विद्यमान रहता है। इसी सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहते हैं। सत्कार्यवाद के दो रूप हैं, पहला परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। प्रथम मत परिणामवाद के अनुसार कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कारण का सचमुच रूपांतरित होना, जैसे दूध का परिणाम दही है, मिट्टी का परिणाम घड़ा। यहाँ दूध और मिट्टी के वास्तविक रूपांतर या विचार होने से ही दही या घड़े का प्रादुर्भाव होता है, यह सांख्य का मत है। द्वितीय मत विवर्तवाद अद्वैत वेदांत का है। उसका कहना है कि कारण में जो विकार या रूपांतर पर लक्षित होता है वह वास्तविक नहीं, एक आभास मात्र है। जब रस्सी देखने से सांप का आभास होता है तो रस्सी यथार्थतः सांप में परिणत नहीं हो जाती। रस्सी में केवल सांप की प्रतीति मात्र होती है, सांप की सत्ता उसमें नहीं आ जाती। इसी प्रकार जो नाना विकार हमें परिलक्षित होते हैं वे भ्रम या आभास मात्र हैं, यथार्थतः ब्रह्म का रूपांतर नहीं होता, वह शाश्वत रूप से एक सा बना रहता है। फिर भी हमें वह नाम रूपात्मक जगत के रूप में बदलता हुआ सा मालूम पड़ता है। इस मत के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर नहीं बल्कि विवर्त मात्र है। सांख्य दर्शन के सिद्धांत का दूसरा टॉपिक है प्रकृति और उसके तीन गुण। सांख्य परिणामवाद यथार्थ विकार को सिद्ध मानता है। यह सिद्धांत अंततः एक ऐसे मूल उपादान पर ले जाता है जिसका विकार यह सारा संसार है। संसार की सभी वस्तुएं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि समेत कार्य द्रव्य हैं, जो कतिपय उपादानों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। यह जगत कार्य कारणों की संतान या प्रवाह है, अतः इस श्रृंखला का मूल कारण होना आवश्यक है।